ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषित विषण्डा भग्नसङ्कल्पः चिन्ता मापुर्दुरत्यया चालू करते हैं इति इस प्रकार जैसा पूर्व में कहा गया विप्रिया उपेक्षा में अर्थ को ही समझने के कारण परम अनिष्ट गोविंद भाषितम श्री कृष्ण के वचन को आकर्ण्य सुनकर विषण्णा परम विषाद को प्राप्त हुई भग्न संकल्प भग्न मनोरथ गोप्यः कृष्णानुरागिणी ब्रजरमण्या दुरत्यया दुष्पार अपार चिंता चिंता में आपुः पड़ गए प्रातःकालीन बैठक में हम लोग सुन रहे थे श्री भगवान के उद्गार श्री गोपीजनों के प्रति अपने निकट आई हुई परम प्रेममयी गोपियों को भगवान लौकिक धर्मों का उपदेश कर रहे थे। बाह्य दृष्टि से देखने पर ऐसा लगेगा ना समझ व्यक्ति को कि भगवान गोपियों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं और गोपियां वास्तव में अधर्म करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने पति का त्याग करके और पति के बंधुओं का पति की सेवा का त्याग करके और श्रीकृष्ण से प्रेम करती हैं, श्रीकृष्ण के पास आई हैं, श्रीकृष्ण को सब कुछ मांग करके, तो यह गोपियों के द्वारा अधर्म हो रहा है और श्री भगवान उन्हें अधर्म में मन लगाने से मना कर रहे हैं और धर्म में रत होने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। परंतु जो अभिज्ञ हैं, जो जानते हैं भगवत के प्रसंग को और भगवान कृष्ण के स्वभाव को, तो वे भागवत के प्रसंग द्वारा ही ये बात समझ जाते हैं कि वास्तव में भगवान गोपियों को इस प्रकार का कोई उपदेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही वेणु नाद करके उन्हें बुलाया है। जो सर्वोच्च साध्य है किसी जीव के लिए, उस साध्य को गोपियां प्राप्त कर चुकी हैं और जितने भी साधन हैं, जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन, वेद का अध्ययन, यज्ञ, दान, तप, ये सब जो उत्कृष्ट साधन है किसी की उन्नति के लिए, प्राकृत धरातल से उठा करके जीव को उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक साधन हैं, जहां लग साधन वेद बखाने सबकर फल हरि भगत की भवानी। जितने भी साधन है उच्च कोटि के और बड़े बड़े लोग संसार के उत्तरदायित्व का त्याग करके और कुछ बहुत परमार्थिक साधनों में लगे रहते हैं, अपने जीवन का परम सार पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए, तो जिसको परम साध्य माना गया है और अनेक साधनों के द्वारा उसे साधित किया जाता है, श्री गोपिया उसमें अपने आप ही आरूढ़ है। किसी साधक की या किसी सिद्ध की तुलना गोपियों से नहीं की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति छोड़ा है संसार को भगवान के लिए परमार्थिक जीवन के लिए तो इस तरह से नहीं छोड़ा है जैसे गोपियों ने छोड़ा है। तो क्या ऐसे उन्नत साधकों के लिए श्री गोपी जनों के लिए भगवान का क्या ऐसा उपदेश हो सकता है कि तुम जाओ संसार में रहो और इस तरह मेरे साथ संबंध रखना मेरे पास आना या धर्म। कोई जानकार व्यक्ति थोड़ा भी भागवत के मर्म को जानता है जिसने साधु संग किया है महात्माओं के मुख से सुना है और भगवान श्री कृष्ण में जिसकी सहज श्रद्धा है वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। वो तो प्रथम श्लोक से लेकर के दसवें श्लोक तक मतलब भगवान के उद्गार में प्रत्येक श्लोक में जानता है कि भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं वह गोपियों की महिमा को ख्यापित करने के लिए कह रहे हैं, न कि उन्हें उन लौकिक कर्मों में पुनः जोतने के लिए कह रहे हैं। गीता में हम लोग पढ़ते हैं भगवान जब यह कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन अब तुमको मैं समस्त उपदेशों का सार सुना रहा हूं, गुह्यतम सार सुना रहा हूं, तो उसमें भगवान ये कहते हैं मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिने। हे मित्र तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सखा हो, तुमसे मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तुम मुझमें मन लगाओगे, तुम मुझमें मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, ऐसा करने पर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रतिज्ञाने प्रियोसिने, प्रतिज्ञाने का अर्थ प्रतिज्ञा करो, मैं संकल्प करता हूं, मैं इस जगत के सामने बोल रहा हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति मुझमें मन लगाएगा, मेरा भक्त बनेगा, मुझे प्रणाम करेगा, मेरी पूजा करेगा, तो वह मेरे पास में आएगा। उस समस्त धर्मों के इस सार को, चार प्रकार की भक्ति को, भगवान का भक्त बनना, मन लगाना, पूजा करना, नमस्कार करना, गीता का सार उन्होंने यही बताया। और अंत में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षेषामि मा सुत। तुम समस्त कर्तव्यों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं जो कहता हूं वो करो। तो अर्जुन को ये शंका है कि और कर्तव्य का मैं पालन नहीं करूंगा, धर्म मतलब कर्तव्य, तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों के रिएक्शन से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन को भगवान यह कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ो। वह भगवान गोपियों जैसे उच्चतर सिद्धों को साधकों को कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं वही धर्म करो और हमको छोड़ दो, कैसे कह सकते हैं। भगवान की बातें युक्ति के अनुसार शास्त्र के तत्वज के अनुसार गलत ठहर रहे हैं। वो गलत नहीं कही जा सकती, गोपी जनों के लिए गलत है भगवान की बात, लेकिन सामान्य जीवों के लिए वही ठीक है। जो जैसा होता है उसके अनुसार उसको साधना का उपदेश किया जाता है, सबके लिए एक उपदेश नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नदी में सवारी करना चाहता है, नदी पार करना चाहता है, तो उसके लिए कहा जाएगा नौका में बैठो, बोट से पार करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति नौका पर बैठ करके चला आया हो, नदी पार कर चुका हो या नदी के इस तट पर हो, तो उसको कोई कहे जाओ नौका से पहले आओ चल करके, तो क्यों नौका की सवारी करेगा? वो तो कार की सवारी करेगा या ट्रेन की या बस की, और उसे जल में तो चलना नहीं है, उसका अधिकार दूसरा है। और इसी तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति वायुयान से यात्रा कर रहा है, तो उस व्यक्ति पर संसार के जो ट्रेन आदि के नियम है वो लागू नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए लाल सिग्नल है किसी ट्रेन के स्टेशन पर, तो ट्रेन वाला ड्राइवर देखकर रोक देगा, क्या वायुयान वाला भी रोकेगा वहां? और कोई देखे कि वायुयान जा रहा है, प्लेन जा रहा है और लाल सिग्नल है, फिर भी देखो ये जो ड्राइवर है पायलट है वो मूर्ख है, उसको दंड मिलना चाहिए। क्यों उड़ाया, क्यों नहीं नीचे के सिग्नल को फॉलो किया? उसका अधिकार ऐसा नहीं है कि वो नीचे के सिग्नल को फॉलो करता चले, वो तो अनेक प्रकार के दुर्गम पहाड़ समुद्र आदि को पार करता जा रहा है, ये है उसका अधिकार। उसे हम अपनी सीमा में नहीं रोक सकते कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। इसी तरह से गोपियों का जो अधिकार है भगवान के प्रति, जो उनके चित्त की धारा है, वो इतना निर्बंधन में है, इतना निर्बंधन में है कि उसको भगवान का प्रवचन या दुनिया का कोई भी उपदेश उनको रोक नहीं पाएगा। कृष्ण से इतना प्रेम करती है तो भगवान जो कुछ भी बोल रहे थे वो जगत के सामने गोपियों के अधिकार को रखना चाहते थे, तो देखे कि गोपियां हैं क्या वास्तव में। तो आज तक लोगों के मन में संदेह छाया रहता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कि श्री कृष्ण इतने महान होकर भी पर स्त्रियों के साथ क्यों प्रेम किए, क्यों नृत्य किए, क्यों विहार करते हैं, आज तक लोग समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत दुरूह विषय है। और जो साधक हैं, भक्त हैं, उनके मन में भी इस प्रकार की शंका बनी रहती है, ऐसा क्यों किया भगवान? इसीलिए बड़े बड़े लेखक साहित्यकार लोगों ने लिखा है, जिनको मानता था समाज भारत में कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लिखते हैं, प्रमाणिक लिखते हैं, ऐसे लोगों ने जब भगवान श्री कृष्ण पर लिखा है तो वे कहते हैं निश्चित ही द्वारका हस्तिनापुर के जो कृष्ण हैं वो ब्रज के नहीं है, वो ब्रज के दूसरे कृष्ण थे। अगर यह कहा जाए, कोई कहता है नहीं नहीं बचपन में वही ब्रज में थे, बाद में वो मथुरा गए, द्वारका गए, नहीं नहीं एक व्यक्ति इस तरह से बदल नहीं सकता। कहां दही माखन की चोरी करके खाने वाला, गोपियों के साथ नाचने वाला, उनसे प्रेम करने वाला, और वो व्यक्ति कैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध का नेतृत्व कर सकता है, उसकी अग्र पूजा हो हस्तिनापुर में सबके सामने? नहीं नहीं, वो दो है, ऐसा ही लिखा करता है। और समाज में मनुष्यों को पढ़ाया जाता है तो मान लेते हाँ हाँ ये दो कृष्ण है, एक नहीं है। क्योंकि एक के करेक्टर में बहुत अंतर है और एक इतना शुद्ध, इतना बड़ा व्यक्ति जिसकी पूजा ब्रह्मर्षियों की सभा में हो, राजर्षियों की सभा में हो, युधिष्ठिर जैसा सम्राट जिसके चरणों का सेवक हो, वह व्यक्ति क्या बचपन में ऐसा हो सकता है? नहीं, तो दो थे। तो उनकी बात को मूर्ख लोग और अच्छे से मानते हैं, देखो कितना कितना गंभीर अन्वेषक है या लेखक है, इस तरह से लोग समझने में बहुत अच्छा विचार किया। आज कोई बोले सभा में कि श्री कृष्ण को भगवान कहना उचित नहीं है, श्री कृष्ण हम लोग जैसे व्यक्ति थे, ये है कि तेजस्वी थे, तो इस बात को सुनने वाले मूर्खों की संख्या ज्यादा होगी। अगर यह कहा जाए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो इसको नहीं सुनना चाहेंगे। इस समाज की ये दशा हो चुकी है, ऐसा गलत प्रचार हो चुका है कि उसके अनुसार मनुष्यों की बुद्धि हो गई है। अगर वे नई बात सुनना चाहते हैं, वो नई बात कोई बोलता है तो उसी को सुनना चाहते हैं, भले वो कितना भी अटपटांग हो। आप संसार में देख सकते हैं अभी कोई वस्त्र पहन करके कोई व्यक्ति महात्मा है या कोई व्यक्ति आ रहे तो उसको देखने के लिए कम लोग जुटेंगे, एक नंगा घूमने लगे तो उसको देखने के लिए हजारों आदमी हो जाएंगे, है ना। और नग्न देखेंगे क्या, लेकिन अगर नग्न घूमने लगे तो उसको देखने के लिए जुट जाते हैं। हम लोगों ने देखा है स्कूल में जहां तहां इस बात, कोई जीटी रोड से नंगा चलने लगा तो पूरे स्कूल से लड़के आ जाते थे रोड पर, देखो जा रहा है भैंसा जा रहा है, नग्न जा रहा है, क्या है नग्न। लेकिन यही है मानव, यही मानवों की दशा है इस समय। कोई अगर पटांग बात बोले, गलत बात बोले और सीधा सभा में कहे कि ये शास्त्र नहीं मानते हैं हम, ये शास्त्र ब्राह्मणों ने लिख दिया है दूसरों को ठगने के लिए, ये शास्त्र तो हम ही तुम्हारे जैसे लोग लिख दिए, इसमें है क्या, तब इस बात को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यह कलयुग वास्तव में मनुष्य जाति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जी को लिखना पड़ा भगवद गीता एज इट इज, ये लिखना पड़े इसकी क्या जरूरत थी। इसका अर्थ गीता पर बहुत बहुत व्याख्याएं हैं, बहुत बहुत ग्रंथ हैं, लेकिन कोई भी ग्रंथ, उसमें आधुनिक ग्रंथों की बात कह रहे हैं, कोई भी गीता किसी को कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करती, कोई मतलब परपर्ट तत्पर्च अनुवाद भगवान के लिए, अगर श्री भगवान शब्द आया है हमेशा तो उसके लिए परमात्मा, परमात्मा ब्रह्म ईश्वर इन शब्दों का प्रयोग किया है। अरे सीधा क्यों नहीं श्री भगवान कहते हो और कभी कभी कृष्ण क्यों नहीं कहते हो। अगर तुम गीता समझे हो तो जो भगवान बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ तो कहना चाहिए ना कि कृष्ण की शरण में जाओ, सीधा कहना चाहिए श्री भगवान की शरण में जाओ। जो अर्जुन के रथ पर बैठे बैठे उपदेश कर रहे हैं वही है न वाच्य उस शब्द के, और कौन वाच्य हो सकता है। और लिखते नहीं नहीं जो अर्जुन के रथ पर बैठे हैं वो कृष्ण नहीं, कृष्ण के भीतर जो ब्रह्म है उसकी शरण में जाओ, वो तुम्हारे भीतर भी है, हमारे भीतर भी है और कृष्ण के भीतर भी है। बाप रे, इतना बड़ा अन्याय संसार में हो रहा है। भगवान में देह देही का भेद करते हैं, भगवान को साधारण जीव समझते हैं। जो लोग वैष्णव परंपरा में हैं और परंपरा से जिन्होंने सुना है वे लोग कृष्ण के विषय में ऐसा संदेह कभी नहीं कर सकते, जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नक्ष सिख तक ब्रह्म है, चेतन है, परमात्मा है, परम ईश्वर है, इस बात को समझते हैं। अतः कभी भी मनुष्य में, कृष्ण में मनुष्य बुद्धि नहीं कर सकते और मनुष्य की जो कमजोरियां हैं वो कृष्ण पर आरोपित नहीं कर सकते। अतः सदा सत्संग में रहना चाहिए, बारंबार कृष्ण की महिमा को सुनना चाहिए, यह आवश्यक है, नहीं तो भ्रम होने में देर नहीं लग सकती। भगवान की लीलाएं ही ऐसी हैं, लोकोत्तर लीलाएं, लोकोत्तर लीला जैसे ये लीला है, बांसुरी बजा करके ब्रज ज्योतियों को बुलाना और उनके साथ अनेक प्रकार से दिव्य नृत्य करना और अनेक विहार करना, इसको यदि वास्तव में कोई वैष्णव नहीं है और परंपरा से गुरुमुख आदि से सुना नहीं है तो वह व्यक्ति भी भ्रमित हो जाए, वो निश्चित भ्रमित हो जाएगा, भगवान पर दोष बुद्धि करेगा। और जो जिसकी कृष्ण में दोष बुद्धि हो गई वो व्यक्ति क्या परमार्थिक सुख पाएगा, क्या विकास करेगा, तो कुछ भी आडंबर करे, कुछ भी साधु का भेष दिखावे, कुछ भी, पर भगवान के प्रति यदि दोष बुद्धि हो गई तो नष्ट हो गया, संशय आत्मा विनश्यति भगवान कहते हैं। इसी के लिए कह रहे हैं यदि कोई भगवान के विषय में संशय करता है तो विनष्ट हो जाता है, वो फिर ठीक रास्ते पर नहीं आ पाता है। अतः हम लोगों को भगवान के वचनों का यथार्थ अध्ययन करना चाहिए, भगवान क्या बोल रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि भगवान ने उस तरह का प्रवचन किया परंतु गोपियों की प्रार्थना के बाद, गोपियों की उक्ति के बाद भगवान ने बिल्कुल स्वीकार किया उन्हें। ऐसे देखने लगता है भगवान के वाणी में व्यतिरेक हो रहा है, पहले धर्म पालन की शिक्षा दे रहे थे और फिर जो गोपियां चाहती थी वही उन्होंने किए। तो गोपियों के वचन से भगवान के जो वचन हैं वो निरस्त होकर दिए गए। तो भगवान के वचन को सुन करके गोपियों पर क्या असर हुआ, क्या प्रभाव हुआ, इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। निरंतर इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि इस राष्ट्र प्रसंग के वक्ता हैं परमहंस चूड़ामणि सर्वज्ञ श्री सुखदेव गोस्वामी। उनके मुख से निकला हुआ है, इसलिए यह प्रसंग उत्कृष्ट है। इतना तो पहले ही मान लेना चाहिए, अपने आप मान लेना चाहिए कौन व्यक्ति बोल रहा है। अब देखिए, जब बीच में महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, उस प्रश्न का समाधान केवल तीन चार श्लोकों में करके और फिर कहते हैं सुनो। इसका मतलब सुखदेव गोस्वामी की बहुत आसक्ति है भगवान की इस लीला में, वे इसी में वास्तव में जीवन भर रहते हैं, अभी भी वे हैं। इतनी आसक्ति है कि प्रश्न के बाद भी वे उसी को कहते हैं सुनो सुनो, झुंझला गए थोड़े देर के लिए। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके झुंझला गए, क्या हो गया, जिसे कोई भोजन में पत्थर पड़ जाए, किरकिरा दांतों के अंदर वैसे लगाई, क्या कर दिया। तो डांटते हुए से फिर चालू किए भगवान के वचन का प्रभाव गोपी जनों पर, क्या हो इसका वर्णन करते हैं। इति विप्रियमा कल्या गोप्यो गोविंद भाषितम विषंडा भग्न संकल्प चिंता मापुर दुरत्यया। इसका अन्वय इस तरह से है, इति विप्रियम उपेक्षा मयत्वेन अवगमात परम अनिष्टम गोविंद भाषितम गोकुलेन्द्रत्वेन निज सहज प्रेम भर विषयस्य श्रीकृष्णस्य स्फुटन वचनम आकलन श्रुत्वा विषणा परम विषाद प्राप्त भग्न संकल्प भग्न मनोरथ गोप्य कृष्णानुरागिण्य व्रजरमण्य दुरत्ययाम दुष्पाराम चिंताम अनिष्ट प्राप्ति जनितम ध्यानम आपु प्राप्त। यहां पर श्रीकृष्ण के लिए गोविंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गोविंद, गोविंद के दो मुख्य अर्थ ब्रजलीला में लिए गए, जो गायों के पालक हैं, गायों के रक्षक हैं, परम ईश्वर होते हुए भी इतना कोमल हृदय, गायों को चराने के लिए परिश्रम किए ब्रज में रहते हैं। और दूसरा गोविंद का अर्थ है गो का अर्थ इंद्रियां, जो इंद्रियों को परम सुख देते हैं, जो आंखों के लिए अमृत हैं, जो वचन के लिए वाणी के लिए सौभाग्य के विषय हैं, वाणी के लिए अमृत हैं, कान के लिए अमृत हैं, जिनका स्पर्श कोटि कोटि चंद्रमा से भी अधिक शीतल और आनंददायक है, और जिनके असमूर्ध सुगंध को नासिका पा करके सदा के लिए निहाल हो जाती है। इस तरह जो इंद्रियों में आह्लाद उत्पन्न करते हैं, सुख उत्पन्न करते हैं सभी जीवों के, इनको गोविंद कहा जाता है। देखो, जो गोविंद हैं वे आज समस्त इंद्रियों में विष ज्वाला भर रहे हैं, ऐसे इनको नहीं बोलना चाहिए। इनको तो इंद्रियों को सुख देने वाला वचन बोलना चाहिए, कानों के लिए अमृत हो सब कुछ। तो सुखदेव गोस्वामी एक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं, गोविंद आज ऐसे उल्टा वचन बोल रहे हैं, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ सुखदेव गोस्वामी का अपना विचार है, गोपियों के साथ भगवान को इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए। अथवा गोविंद भाषण गोकुलेन्द्र प्रेम निज सहज प्रेम भर विशेष श्रीकृष्ण से, श्रीकृष्ण चूंकि गोकुलेन्द्र हैं, गौओं के आवास के ब्रज के ईश्वर हैं, अतः गोपियों के प्रेम के सहज विषय हैं, सहज प्रेमास्पद है। अपने कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं गोपियां श्रीकृष्ण से, और ऐसे श्रीकृष्ण के भाषितम वचन को उन्होंने सुना। भाषितम का है अर्थ स्पष्ट वचन, गोविंद भाषितम आकरण, एक एक बात को समझ रही थी और प्रत्येक वचन, प्रत्येक वचन उनको गृह प्रत्यावर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था। कृष्ण का एक भी वचन मतलब उपेक्षामय अर्थ करने से ऐसा नहीं था जो गोपियों को प्रोत्साहित करे कि हे प्रियाओ तुमने अच्छा किया कि हमसे प्रेम किया, तुम आई बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कोई नहीं अर्थ आ रहा है। ये भी सारा अर्थ वैसा ही है, परंतु गोपियों ने एक बार मान लिया कि ऐसे उपेक्षा कर रहे हैं तो वही अर्थ सूझने लगा। गोविंद के इस भाषितम को आकर्ण आका अर्थ सम्यक और करण का अर्थ कान लगा करके सुन करके, आकर्ण का अर्थ सुन करके बहुत ध्यान से विचार करके विषादा विषाद में डूब गई। विषण विषाद शोकग्रस्त हो गई, परम विषादम प्राप्त है, दुख में पड़ गए, सब कुछ त्याग करके जिसकी शरण में आई और वही ऐसा बोल रहा है कि नहीं नहीं यह धर्म हो रहा है यह पाप होने जा रहा है, तुम अपने धर्म को देखो, तुम घर जाओ, क्या कर डाला तुम लोगों ने, यहां आई यही अनुचित है, फिर मेरे साथ रहना और मेरे साथ नृत्य आदि करना, मेरे साथ विहार करना है, तो कितना बड़ा अधर्म हो रहा है, भगवान के वचन से सब व्यक्त हो रहा था। इस काल से गोपियां विषाद में पड़ गई, गोपियों के जीवन का यह संकल्प था कि हम सब कुछ छोड़कर के कृष्ण के साथ रहेंगे, सब कुछ छोड़कर यही संकल्प था, और वे घर में रह रही थी तो रह रही थी बाध्य होकर के, दो तरह की बाध्यता थी, एक तो सबसे बड़ी बाध्यता थी प्रियतम का वचन, जब उन्होंने चिरहरण के समय कहा था कि तुम लोग रहो अपने घर पर रहो और आगामी शरद काल की रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा, इसको उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं विहार करूंगा, तुम्हें मैं रखूंगा लोक की अपेक्षा पूरा छोड़ करके, लेकिन इसके साथ जो उन्होंने कहा कि तुम घर पर रहो तो इस कारण से उन्हें घर पर रहना पड़ रहा था, और दूसरा रहने का कारण यह भी था कि श्री कृष्ण अभी बुलाए नहीं थे उनको, घर पर रहने के लिए कहे थे और बुलाए नहीं थे, अतः लोक लाज और सब कुछ देख करके उन्हें घर पर रहना पड़ रहा था बाध्य होकर, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा तो स्वप्न में भी नहीं थी कि हम यहां रुके रहें, जैसा उनके वचन से आगे प्रकट होगा। वे कहती हैं कि हमारे पैर आपके चरण तल से एक पग भी नहीं जा रहे हैं, हम कैसे जाएं, और यदि भगवान मान लीजिए कहे कि मैं आगे आगे चलता हूं चलो मैं पहुंचा आता हूं घर पर, तो कहते नहीं हम नहीं जा सकते, आप वृंदावन में हैं तो हम आपके पास आ रहे हैं, आप ब्रज में जाएंगे हम आपके साथ नहीं आ सकते, नहीं जा सकते ब्रज की ओर नहीं जाते, और मान लीजिए यदि आप कहें कि हम आगे आगे चलते हैं चलो और आप हमें पहुंचा भी दे तो हम वहां जाकर करेंगे क्या, हाथ की वृत्ति को आपने छीन लिया है, पैर की वृत्ति को छीन लिया, चित्त को छीन लिया, इस हाथ से हम दूसरे की सेवा कभी नहीं कर सकती, ये हाथ आपके लिए है, ऐसा साफ कहती है, पादो पदम में चलो तस्तव पाद मूला जाम कथम ब्रज मथो करवा मकी, हम कैसे ब्रज में जाएं और वहां जाकर के हम करेंगे क्या, अब तक हमारे हाथ दूसरे की सेवा कर रहे थे, अब आपकी सेवा छोड़ करके दूसरे की सेवा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं, हम प्रयास भी करें कि मेरे हाथ लगे दूसरे की सेवा में ये लग ही नहीं सकते, अतः हम ब्रज में जा नहीं सकती है और जाकर के भी करेंगे क्या, यह गोपियों का संकल्प था और उनकी बाध्यता थी, वे रह रहे थे घर पर, लेकिन अब जब प्रियतम ने बुलाया तो गोपियों ने छोड़ा तो निःशेष रूप से छोड़ा, निःशेष रूप से मतलब पुनः अनंगीकार रूप से छोड़ा कि फिर घर आना नहीं है, ऐसे नहीं कि जाकर के कृष्ण से मिल करके इसके बाद हम आ जाएंगे और घर पर रहेंगे, नहीं नहीं, इन्हें लौटना नहीं था। इस संकल्प के साथ वे पहले थी, वास्तविक के वादन के समय तो कोई संकल्प विकल्प का प्रश्न ही नहीं था। उस समय उन्होंने कोई संकल्प किया या सोचा इसका कोई प्रश्न नहीं। तो इस प्रकार उनका संकल्प भग्न हो गया, भग्न संकल्प। श्रील सुखदेव गोस्वामी ये सब शब्द दे रहे हैं, विषादा भग्न संकल्प, विषाद में डूब गई, संकल्प भग्न हो गया। दुरत्यम चिंता मापू, अपार चिंता में पड़ गई। चिंता क्या? अनिष्ट प्राप्ति जनितम ध्यान, अनिष्ट बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। अनिष्ट क्या था? कृष्ण का साथ नहीं मिलना, यही सबसे बड़ा अनिष्ट, बहुत बड़ा दुख। इसकी चिंता करके कृष्ण का संग नहीं मिलेगा, कृष्ण के साथ हम नहीं रह पाएंगे, प्रियतम ही नहीं चाहते हैं, यह ध्यान ऐसा था जो अनिष्ट की बारंबार आशंका कर रहा था, उसको श्री सुखदेव गोस्वामी दुष्पारम दुरत्ययाम चिंतन कर रहे हैं। किसी भी तरह से इस चिंता, इस दुख से मुक्त नहीं हो रही थी, बहुत घबराने लगी। तत्काल ही उनका चेहरा बिल्कुल कुम्हला गया, शरीर छीण हो गया। तुरंत इनके वचन सुनते, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के वचन में अमृत भी है और हलाहल विष भी है। वे चाहे तो एक क्षण में अनुकूल वचन बोल करके किसी को तुरंत स्वस्थ कर देते, बिल्कुल छीण शरीर वाला पूरा हेल्दी हो जाता है सुनकर वचनामृत से। और अगर विपरीत वचन बोल दे तो सुनने वाले को इतना दुख होता है कि उसी समय छीन जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, एक बार भगवान अपने भवन में बैठे थे द्वारका में, चंद्रमा की किरण आ रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपने छत के बरामदे में बैठे, टेरेस में बरामदे में बैठे, तो श्री रुक्मिणी जी भगवान की सेवा कर रहे थे। यदि घर में हजारों दासियां थीं, लेकिन उन दासियों को न लगा करके रुक्मिणी जी स्वयं ही सेवा करती थी। भगवान की सभी पत्नियों का यही स्वभाव। तो चामर दुला रहे थे, उसे चमर डुला रही थी, बहुत सुंदर चित्रण सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे और सेवा भाव का, प्रेम का। भगवान ने देखा मेरी प्रिया मुझे कितना मानती है, सेवा के भार से भगवान बिल्कुल दबे थे। बहुत प्रेम करते थे रुक्मिणी, भगवान को देखी नहीं थी, तभी उसने पत्र लिखा था कृष्ण के पास, और भगवान समस्त राजाओं को परास्त करके रुक्मिणी को ले गए। लेकिन रुक्मिणी के भावों को वे समझना चाहते थे। और एक और बात थी कि रुक्मिणी जी दक्षिण नायिका है, दक्षिण नायिका का अनुकूल बिल्कुल, वो कभी मान नहीं करती थी भगवान से, कभी रूठती नहीं, लेकिन भगवान को इच्छा बनी रहती थी कि रुक्मिणी कभी रूठे और मैं इसको मनाऊं, ये भगवान की इच्छा रहती है। पर रुक्मिणी जी इतनी भोली भाली सीधी साधी अपनी पत्नी है, वो कभी रुठती नहीं, और सत्यभामा जी हमेशा रुठती ही रहती, उनका स्वभाव ऐसा है। रूठी हुई प्रिया को मनाने में जो सुख मिलता है तो प्रिय लोगों को मालूम होगा। भगवान भी इस रस के लिए तरस रहे थे। रुक्मिणी जी से उन्होंने थोड़ा सा ऐसा वचन कहा कि वो सोचते थे कि रुक्मिणी रूठेगी और डांटेगी, कभी ऐसे हमसे मत बोलना, आज से मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, क्यों इस प्रकार की बात बोल रहे हो। लेकिन हो गया उल्टा, भगवान कहे कि रुक्मिणी देखती हो मेरा क्या स्वरूप है, मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं जरासंध के भय से अपनी जन्मभूमि छोड़कर भाग गया, मथुरा छोड़ दिया, तो हमारे अपना घर द्वार तक छोड़ दिया। सच पूछो तो हमारा कोई घर नहीं है, मतलब मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं निर्धन व्यक्ति हूं। कहीं भी मुझे समय जमीन नहीं मिली, कहीं भी गुजारा नहीं हुआ, तो आकर के समुद्र में घर बनाकर रह रहा। ये तो जानती हो ना। और मेरा यह भी स्वभाव है कि मैं स्त्री धन आदि में बिल्कुल आसक्त नहीं हूं। तुम्हारे जैसी ज्योति स्त्री के लिए ऐसा पति चाहिए जो तुम में आसक्त हो, स्त्री में आसक्त हो, उसकी मांगों को पूरा करे। कई तरह से स्त्री की मांग होती है, उसे अलंकार दे, घर दे, सब कुछ दे। लेकिन मैं चूंकि आसक्त नहीं हुआ तो मैं कब तक कुछ करूंगा कोई ठिकाना नहीं। और हमसे जानती हो कौन लोग प्रेम करते हैं? ये फकर बाबा जी लोग हमसे प्रेम करते हैं। इस सांसारिक सुख चाहने वाले लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं, और इसलिए कि मैं प्रतिदान करता नहीं हूं। इसमें भी रहस्य था भगवान की बोलने का। ये देखो, किसी स्त्री लंपट राजा से विवाह कर लो, हमसे आशा मत करो कि ये सुख देंगे, ये करेंगे, कर हम कब तक है, कब छोड़ देंगे, कोई ठीक नहीं। और हमको वैसे ही निर्धन बाबा जी लोग ही अच्छे लगते हैं। हम इस धन स्त्री में आसक्त नहीं है। तो मान लीजिए अगर रुक्मिणी पूछती कि तब आप क्यों गए, वहां गए थे भगवान कुंडनपुर, कुंडनपुर आप क्यों गए थे मेरा अपहरण करने के लिए, तो भगवान कह अपने आप ही एक प्रश्न की आशंका करके कहते हैं, असल बात है रुक्मिणी की ये शिशुपाल आदि जरासंध आदि जो थे वो मुझसे बहुत द्वेष करते हैं, और वो बनते हैं बहुत अपने को भी, तो उनका मान मर्दन करने के लिए मैं गया था, वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं गया। और इसके पहले भगवान एक बात बोल दिए थे कि मैं बहुत डरपोक व्यक्ति हूं, क्षत्रिय में यदि भय आ जाए तो क्षत्रिय किसी काम का नहीं होता है। तुमको मालूम है, सुनी होगी कि जरासंध के भय से मैं भाग चला था युद्ध छोड़कर। हम दोनों भाई भाग गए थे, मथुरा छोड़ दिए सदैव तुमने। तो ऐसे डरपोक क्षत्रिय के साथ तुम विवाह करके बहुत घाटा में पड़ गई। और इसके बाद अगर रुक्मिणी ने कहा कि फिर तो आप जरासंध शिशुपाल आदि को हरा करके मेरा अपहरण के, तो कहते हाँ वो लोग बहुत ज्यादा द्वेष करते थे, इसीलिए उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको मान मर्दन करने के लिए मैं गया था। मैं कभी स्त्री में आसक्त व्यक्ति नहीं हूं, ये तो भगवान सही ही बोल रहे हैं। वो तो आत्माराम शिरोमणि है, किसी स्त्री में क्या आसक्त होने। तो बहुत प्रवचन बड़ा किए, कहे कि देखो मैं इतना तो सोचता हूं कि तुमने मुझे समर्पण किया, तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारा जीवन अच्छा से गुजरना चाहिए, अतः मैं एक राय देता हूं तुमको कि तुम किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को, राजा को कुछ सोच समझ करके अपना पति चुन लो, जो तुम्हारे इस लोक में और परलोक में कामना पूरी कर सके, जो तुम्हारे साथ प्रेम करे, तो उसको चुन लो। और चूंकि मेरी भी पत्नी रही हो, इसलिए विवाह में, रीमैरिज में मैं भी कुछ हेल्प कर दूंगा। रुक्मिणी जी तो शुरू से ही सुन करके बिल्कुल बेहोश हो रही थी, और वो चामर दुला रहे थे भगवान का वचन पूरा होते होते उनको विश्वास हो गया कि प्रियतम हमें छोड़ देंगे। इतना सुनते ही, ये सोचते ही उनको गश्ती मार दे, मूर्छा आ गई, हाथ से चामर गिर गया और धड़ाम से गिर गई जमीन पर, और चूड़ी जो थी हाथ की वो जमीन पर गिर गई, मतलब हाथ इतना पतला हो गया क्षण भर में कि चूड़ी हाथ में नहीं रुकी रही, वो गिर गई, चामर गिर गया और वो सुंदर शरीर वहीं पर गिर गया कालीन पर। भगवान ये सब देख रहे थे, गिरते ही भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप से होकर के उठाए प्रिया को, चार भुजा इसलिए प्रकट कर लिए कि केस सहलाना था, आंसू पोछना था, स्तन को पोछना था, कई काम थे, इसलिए भगवान तुरंत उठा ले, उठा करके अपने गोद में बैठा ली। और रुक्मिणी जी को होश नहीं हो रहा था, भगवान के वचन की आशंका से कि हमको छोड़ देंगे। तो रुक्मिणी जी बिल्कुल बेहोश थी, फिर भगवान ने पानी का छींटा दिया, केशों को सहलाया, आंख को पोछा, स्तन को पोछा अपने पीताम्बर से सब। और जब रुक्मिणी जी होश में हो गई तो धीरे धीरे समझाने लगे, मैंने तो थोड़ी सी हंसी किया, तुम उसको सत्य मान, हमारे भाग्य में क्या लिखा है कुछ पता नहीं। मैं सोचा कि जब मैं ऐसा कहूंगा तो तुम अपने होठों से अपने दांतों से होठ दबाओगी और तिरछी चितवन करके मुझे डांटोगी, और तुम तो भीग गई, हमको ये भी सुख सुलभ नहीं है कि मैं अपने प्रिया को मना सकूं। आए हाय ऐसे भगवान ये समझाया कि मैं परिहास किया था, मैं हास किया था। और बाद में कहते हैं आखिर अपने ही लोगों से परिहास किया जाता है ना, मैं किसके मजाक करूं, मेरे कौन है, तुम ही मेरी हो ना। लेकिन तुम ऐसी भोली भाली औरत क्या कहा, जो सुनते ही गिर गई। मेरे भगवान बोल रहे हैं, फिर कहते हैं प्रिय मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता हूं, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये कह करके आश्वासन दे, रुक्मिणी जी को विश्वास हो गया कि वास्तव में ये मजाक कर रहे थे, तो बिल्कुल प्रसन्न हो गए। पहले जैसे ही फिर सुंदर शरीर भरा पूरा हो गया, फिर भगवान के वचनों की व्याख्या किया है रुक्मिणी जी ने, बहुत सुंदर व्याख्या कि आप जो कहते हैं सही कहते हैं, आप स्त्री में आसक्त नहीं है। तो कहती आप तो आत्मा राम है, आप क्या आसक्त होंगे किसी स्त्री में। रुक्मिणी जी कहते हैं कि आप भले आसक्त हो या न हो, लेकिन हमारा अनुराग आपके चरणों में होना चाहिए, बस मेरी यही प्रार्थना है, आप जिस बात में राजी हैं खुश हैं रहें, लेकिन हमारा प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में उदाहरण है कि भगवान के वचन से, प्रतिकूल वचन से क्या हालत हो जाती है। रुक्मिणी जी को उन्होंने कह दिया कि कोई दूसरे से विवाह कर लो, ये सुनते ही वो उनकी वो दुर्दशा हो गई। गोपियों की क्या दुर्दशा हुई जब कह दिया कि तुम लोग लौट जाओ, जाओ अपने पतियों की सेवा करो, अपने घर पर रहो, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, और ठीक है जैसे सब लोग प्रेम करते हो वैसे हमसे प्रेम करो, कभी कभी देख लेना, या मैं भी बांसुरी बजा करके सुना दूंगा, कभी कभी रास्ते में भेंट हो जाएगी, कभी पनघट पर भेंट हो जाएगी, बस ऐसे छिप कर कभी कभी देख लेना हो गया, अब ज्यादा क्या कर। यह सुनते ही गोपियां बिल्कुल दुख में ग्रस्त हो गई, चिंता मातुर दुरत्याम, दुरत्याम का अर्थ ऐसे चिंता के समुद्र में पड़ गई जिसको पार करना कठिन था। चिंता मन में होती है, ध्यान को ही कहा गया चिंता, ध्यान करने लगी, ध्यान का मतलब है मन में सोचने लगी हाय हाय क्या हो गया। कभी कभी मन में आता है क्या प्रियतम के चित्त में कोई जादू टोना कर दिया जो हमसे उदासीन हो गए, क्या हो गया, इतना कोमल स्वभाव, इतना प्रेम से बोलते थे, और भगवान स्वयं ही कभी कभी गोपीजनों से कहते थे एकांत में मिलने पर, प्रतिदिन का नियम था कि एक दिन हम सब कुछ छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, सब कुछ छोड़ करके हम लोग साथ में रहेंगे, ये कहते थे। और आज जब सब कुछ छोड़ करके गोपियां आई हैं तो ऐसे वचन बोल रहे हैं, इसलिए बहुत चिंता हुई। चिंता से मनुष्य का शरीर तुरंत क्षीण हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, चिंता से चतुराई घटे तुरंत। अब उनके सामने केवल अंधकार अंधकार दिखने लगा, जीव हम कैसे जिए, क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चिंता प्राप्त नाम स्थिति ना हो, श्रीपाल श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि चिंता से ग्रस्त गोपियों की क्या दशा हुई, क्या स्थिति थी, इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। कृत्वा मुखा न्यवसुचः श्वसनेन सुस्याद् बिम्बाधरा विचरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरुपातमसिभि कुच कुंकुमान तस्थूल मृजन्त उर्दुःख भरा स्मृति उर्दुःख भरा भर का संस्कृत में अर्थ होता है भार वजन अतिशय दुख के भार से ग्रस्त हो गए। मनुष्य के मन में जो दुख है वह एक बहुत भारी वजन के समान होता है। उरु दुख भरा उरु दुख दुख से भरो भारो जसंता कृष्णोपेक्ष तत्व महादुख भार पीड़िता गोप्य। देखिए ध्यान देना चाहिए गोपियों के जीवन में क्या कमी हुई है। पति है घर में धन है सब कुछ है पर श्री कृष्ण ने उपेक्षा कर दिया तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहा कुछ भी नहीं रहा। और जबकि वो झूठा वचन है भगवान का कोई सत्य नहीं था कि भगवान ने वास्तव में त्याग दिया नहीं ऐसा नहीं केवल बनावटी वचन बोल करके भगवान ने ऐसा भाव कर दिया कि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं उपेक्षा कर रहे हैं। तो इसके कारण गोपियों का दुख का भार बहुत बढ़ गया। उरु दुख उरु का अर्थ बहुत अधिक दुख का अर्थ दुख और भर का अर्थ भार से पीड़ित अतिशय दुख के भार से पीड़ित हो गए दुखित हो गए। और इस कारण शुच स्वस्मेना उनकी दीर्घ लंबी लंबी और गर्म सांस चलने लगी शोक में गर्म सांस निकलती है। एक तो लंबी लंबी सांस चिंता के कारण गोपियां परम सुंदर हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसियां हैं उनके सौंदर्य कोई तुलना नहीं लक्ष्मी से भी कोटि कोटि गुना अधिक सुंदरी है। पर श्री सुखदेव गोस्वामी मानो ध्यान से उनकी दुर्दशा को देख रहे हैं भगवान की बात सुनने के बाद तो कहते हैं अच्छे दुख के भार से पीड़ित हो गई और सुचह स्वस्मेन सुचह मतलब शोक के श्वास निकलने लगा सुचह कहते सूखा सूखा सांस गरम गरम हवा निकलने लगी सांस से और इस कारण से सुस्थित बिंबाधराणी उनके बिंब के समान कुंदरू फल के समान लाल लाल जो होठ थे वे बिल्कुल सूख गए सुस्थित गर्म शोक के कारण गर्म सांस निकलने लगी तो उसके कारण ओठ सूखने लगे। सुस्यंत बिंब तुल्य अधरा है जासुतानी मुखानी अवहकृतवा जिन मुखों में जिस मुख पंकज में बहुत सुंदर सुंदर अधर हैं बिंब फल के समान अधर वे शोक के कारण उष्ण स्वास्थ्य से बिल्कुल सूख गए। तो ऐसे सूखे हुए अधरों से युक्त अपने मुखों को मुखानी बदनानी अवह कृतवा वे नीचे कर ली तुरंत मुख झुक गया। वो पहले अपने प्रियतम को देख रहे थे सामने से प्रसन्न थे लेकिन भगवान के वचन को सुन करके वो मुख बिल्कुल नीचे हो गया मुखानी अवह कृतवा चरणे न भुवन लिखंत और अपने बाएं पैर के अंगूठे से पृथ्वी पर लिखने लगी मानो वे धरती से विनय कर रही हैं कि हे मां पृथ्वी तुम फट जाओ हम इसमें समा जाएं। और ऐसे कृष्ण विहीन जीवन से उनको क्या मतलब है इस तरह से सोच रही हैं। अथवा यह स्त्रियों का स्वभाव है दुख के समय वे अपने पैर से नक्श धरती लिखने लगती क्रोधने लगती ये स्वभाव। तो चरणे न भुवम लिखंत उपात मस भी अश्रय कुंच कुंकुमानी मृजंत आंसू का विषय और आंसू निकलने लगे झरझर आंसू चुने लगे तुरंत साधारण आंसू नहीं आ रहे थे बहुत आंसू उमड़ने लगे शोक के कारण। तो हृदय में आग लगती है चिंता होती है तो अपने आप आंखों से आंसू चुने लगते तो देखा गया है कि गोपियों को अब इससे बड़ा दुखमय वातावरण कुछ भी नहीं मिलता, कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आंसू चूने लगे। कैसे आंसू? उपात मसी भी, उपाता मसय, मसी का अर्थ है कज्जल, काजल, आंखों में जो काजल की थी वो काजल से युक्त आंसू चूने लगे। आंसू इतने उमड़ रहे थे कि आंखों के काजल को धोने लगे, इस कारण से वे आंसू बिल्कुल सांवले दिख रहे थे, काले काले आंसू निकल रहे थे आंखों से निकल करके। आंसू काजल को धो करके और चूने लगे, झरझर चूने लगे, दोनों नेत्रों से आंसू चू रहे थे, दोनों अस्तन पर पड़ रहे थे। अस्त्र कुछ कुंकुमानी मृदंते, अपने वक्षस्थल पर लिप्त कुंकुम आदि औलेप को मृजंत अच्छा लेंत, वो धोने लगे। इतना आंसू निकल रहे थे कि अस्तन पर कुछ कुंकुम को धोने, कुंकुम को धोने लगे, काले काले आंसू। और इस तरह तुष्णीम तस्थुष्म, वो बिल्कुल चुप रह गए, मुख से कोई बोली नहीं निकल रही थी कि हम प्रियतम को क्या समझाएं, क्या जवाब दें, केवल दुख में पड़ करके इस तरह से रोने लगे। परंतु ये मूर्छित नहीं हो पाई, गिर नहीं पाई धरती पर। इसका कारण यह था कि प्रियतम श्याम सुंदर के वचनों की कभी कभी कुछ उन्होंने व्याख्या किया, सोचा तो उसमें अपेक्षा भी झलक रही थी, बस यही कारण था। रुक्मिणी जी ने तो भगवान के वचनों को ऐसा समझा कि बिल्कुल छोड़ ही रहे हैं, परंतु गोपियों के साथ भगवान की जो लीलाएं बार बार हुई थी उससे आशा अभी बंध रही थी, अभी आशा थी, इस कारण से मूर्छित होकर के गिर नहीं पाएंगे। पर शोक बहुत हो गया, आंसू उमड़ रहे थे, आंसू काले काले हो रहे थे कज्जल के कारण, और वक्षस्थल के कुमकुम को धो रहे थे। इस दशा को श्री सुखदेव को वर्णन करते हैं, यह एक दशा है प्रेमी की, विरह की, बिल्कुल चुपचाप हो जाना, वाणी निकली ही नहीं, इतने आंसू निकल रहे थे, इतना गला भर रहा था कि बोल नहीं पाई शोक के कारण। अति शोक में यह होता है, बोल नहीं पाए। रो रहे थे। मानो सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल चित्त खींच रहे हों, देख रहे हों बिल्कुल सामने किस तरह से गोपियों की दशा हुई है। प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभासमानं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामः नेत्रे विमिर्जरुदितो पहते स्म किञ्चित् संगं गदद गद गिरो गिरो अब्रुवतानुरक्तः। क्यों इतना दुख हो गया प्रियतम के वचन के कारण? प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभासमानं तदर्थ विनिवर्तित सर्व काम, तदर्थम श्रीकृष्ण सेवा प्राप्त्यर्थम किंवा तस्मय अनिर्वाच्याय सुगोप्याय अर्थाय तेन सह क्रीड़ा विशेषाय इत्यर्थ विनिवर्तिता विशेषेण निवर्तिता पुनर्जथा संबंध गंधोपि न स्यात् तेन एव प्रकारेण परित्यक्ता सर्वे काम तद अतिरिक्त श्रेष्ठा भिलाषा जा भी पा। श्रीकृष्ण सेवा प्राप्ति कामनाया परित्यक्त सर्वाभिलाषय इत्यर्थ। श्रील सुखदेव गोस्वामी गोपियों के लिए कहते हैं तदर्थ विनिवर्तित सर्व काम, तदर्थ श्रीकृष्ण के लिए समस्त विषयाभिलाष को गोपियों ने पूरा पूरा छोड़ दिया था बहुत पहले से ही। विनिवर्तित सर्व काम, बहुत से मनोरथ होते हैं जीव के हृदय में, साधना करने के बाद भी, भक्त बनने के बाद भी कुछ न कुछ मनोरथ रहते हैं, हमें यह करना है, यह प्राप्त करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन गोपियों के जीवन में क्या कामना बची थी, बस प्रियतम श्याम सुंदर की सेवा। तदर्थ दिनवर्ती के सर्व कामना, श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमने सारी कामनाएं सजा के लिए बीत गई थी, कोई कभी संकल्प नहीं उठता, कभी कोई विचार नहीं, केवल यही था कि श्री कृष्ण की सेवा कब मिलेगी, कब सेवा करेंगी, कब चरण दबाएंगी, कब पंखा झलेंगी, कब प्रियतम को नाच करके सुखी करेंगी, गीत गाएंगी, उनको चंदन लगाएंगी, झूला झुलाएंगी, सब तरह से श्री कृष्ण को सुखी करने का ही संकल्प केवल रहा था और कोई कामना नहीं। तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामना और अनुरक्ता तस्मिन् एव अनुराग युक्तः गोप्य, ये दो विशेषण गोपियों के लिए सुखदेव गोस्वामी दिखे रहे। तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामना और अनुरक्ता, श्री कृष्ण ने अक्षय अनुरागवती गोपियां रुदितो पहते रुदित ही स्वमेव गलबस्त्र उपहते व्याप्त, इनके दोनों नेत्र आंसू से व्याप्त थे, तो ऐसे दोनों नेत्र दोनों नयन को विमिर्ज्य गोपियों ने अपने हस्त कमल से मार्जन किया, रो रहे थे, कुछ देर रोती रही और इसके बाद अपने आंसू को अपने हाथ से हस्त कमल से पोंछे सामने, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इसके पूर्व भी भगवान मिलते थे गोपियों से तो उन्हें रोते हुए कभी नहीं देखे थे, थोड़ा सा कभी कभी परिश्रम की बूंद आ जाती थी गोपियों के मुख पर, तो भगवान परम करुणा से अपने हस्त कमल से उसका मार्जन करते थे। आज ऐसे प्रियतम हो गए कि इतने आंसू चू रहे थे फिर भी अपने हाथ से नहीं पोछे, गोपियों ने स्वयं ही अपने आंसुओं को पोछा। विमृज्य मार्जनेना अश्रूणी अपसार्य किंचित संरम्भ गदगद गिरा, अक्सर प्रेम जहां होता है तो वहां पर प्रेम कभी कभी क्रोध का रूप धारण करता है, गोपियों का अक्सर प्रेम है भगवान के प्रति और बिना संकोच के प्रेम है, वे उनको अपना समझती ही है और भगवान ने ऐसे ऐसे वचन और लीलाएं कहा है, अच्छे वचन बोले हैं, लीलाएं किए हैं, गोपियों का सहज विश्वास है कि कृष्ण हमारे हैं, हम इनकी हैं। तो उस समय कृष्ण के इस अप्रिय वचन को सुन करके शोक तो हुआ लेकिन इसके साथ साथ कृष्ण पर क्रोध भी हो रहा है, इस क्रोध का भगवान आस्वादन करते हैं। जैसे आपने सुना कि रुक्मिणी जी से कहते हैं कि हमारे भाग्य में तो ये भी नहीं है कि हम तुम्हारे रूठे हुए फड़कते हुए ओठ को देखें और कठोर वचन को सुने, वह साध भगवान की गोपियों के द्वारा पूरी होती है, श्री राधा रानी के द्वारा। राधा रानी बहुत ज्यादा मान करती रहती है कि भगवान को मनाने में बहुत सुख मिलता है, और यदि कोई गोपी कहते हैं कपटी कहेंगे, तुम जाओ दूसरे के पास, हमको तुम कुछ नहीं मानते हो नहीं, तो भगवान कहते हैं कि मैं बाप की कसम खाकर कहता हूं कि तुम ही सबसे अधिक मेरी प्रिया हो, और वो सत्य बात है, भगवान जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। यदि राधा रानी से कहते हैं तुम मेरी सबसे प्राण प्रिय हो और चंद्राली से कहते हैं, दोनों ठीक है, दोनों अपने जगह पर बिल्कुल ठीक, भगवान झूठ नहीं बोलते। यद्यपि राधा रानी की झूठ की जो सखियां हैं वे श्री कृष्ण से राधा रानी को मिलाने का हमेशा प्रयास करती, निकुंज जून रति के लिए सिद्धे या निभेद युक्ति अपेक्षणीया तत्राति दाक्षा प्रतिबल भस्य वंदे गुरु से चला, ये युक्ति है राधा कृष्ण को मिलाना परस्पर, मिलाने में कई कई बाधा, एक तो लोक की बाधा है और दूसरी बाधा अन्य जूथों की है, सखियों की है। अगर श्री कृष्ण को समय भी मिला तो हो सकता है कोई पकड़कर चंद्रावली की तरफ ले जाए, यह चंद्रावली का अभिसार करके कृष्ण के पास पहुंचा। तो राधा रानी की जो सखियां हैं श्री ललिता जी विशाखा जी आदि, ये सब राधा रानी को श्रीकृष्ण से मिलाने का हमेशा प्रयास करते हैं, इसे बहुत युक्ति चाहिए। देखने में लगता है कि व्रत में भी भगवान की लीला में भी ये सब द्वेष ईर्ष्या सब चलता है, लेकिन ये सब प्रेम की ही तरंग है। इसमें कोई प्राकृत द्वेष प्राकृत ईर्ष्या आदि कुछ भी नहीं है। ये समझना चाहिए किसी, जैसे मैं शुरू में उदाहरण दिया था कि फिटिकरी में और मिश्री में बहुत अंतर है, दोनों एक समान लगते हैं। लगेगा क्या रे वहां निकुंज राज में भी ये सब द्वेष चलता है, और इतना द्वेष आप सुनेंगे। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके लिए विषय में कथा है कि सखी गांव में दोना मिलता था, पत्ते वृक्ष में ही दोना बन जाता। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ पीकर भजन करते थे, तो किसी ने उनको बताया, किसी वैष्णव ने, कि आप ऐसा कीजिए कि आप केवल हाथ से मत पीजिए, इतना जितना उठता था उतना पीते अंजलि। जब सखी गांव में एक दोना मिलता है पत्ते का बना हुआ वृक्ष में ही अपने आप, उससे पीजिए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहले तो स्वीकार कर लिया कि एक जगह मिलता है, बाद में पता चला कि वो दोना चंद्रावली के ग्रुप की सखी के गांव का है, और ये तो राधा रानी के ग्रुप के हैं। तो वहां कहा नहीं, हमें उस दोने को प्रयोग नहीं करना, चंद्रावली की सखी के गांव का है, तो चंद्रावली के सखी के गांव का है, इसलिए उस दोने का प्रयोग नहीं करना। इतना द्वेष देखने में लगता है कि ये तो बहुत भारी द्वेष है, ये है, ये द्वेष नहीं है। ये साधना करते करते और सिद्धांत समझते समझते बात समझ में आती है कि चंद्रावली जी या राधा रानी वास्तव में ये कहीं है। प्रियतम श्याम सुंदर को विविध रस का स्वादन कराने के लिए सब जूत है, रसिक शेखर है, तो अनंत अनंत प्रकार से अपनी प्रियाओं के भाव का स्वादन करते हैं। रासलीला में इसी प्रसंग में, इसी सप्ताह में बात आएगी कि किस प्रकार चंद्रावली और राधा रानी आदि सब एक भाव में आ गए, प्रेम हो गया था। जब श्री कृष्ण सबको छोड़कर चले गए तब सबका भेदभाव मिट गया, सब रो रहे थे, सब राधा रानी को संभाल रहे थे, चंद्रावली भी राधा रानी को उठाकर पोछ रहे थे, कर रहे। और चंद्रावली ने कहा उस समय, जबकि कभी कृष्ण के प्रति वो वाम बुद्धि नहीं करती, मतलब विपरीत भाव नहीं रखती है, और उस समय चंद्रावली कहती है, ओ बेचारी ने सब कुछ छोड़ दिया कृष्ण के लिए, लेकिन देखो पुरुष का स्वभाव, इसको थोड़ा सा मान कर गई, अगर उनके गोद में चढ़ना चाहती थी तो कौन अपराध किया, इसको चढ़ा लेना चाहिए था, इसको छोड़कर चले गए, यही है पुरुष का स्वभाव। चंद्रावली जी कहती है, राधा रानी का गुण गाती है, अगर बेचारी ने थोड़ा मान कर लिया, रूठ गई, कह दी कि मुझे चला नहीं जाता है, तो आखिर सब सेवा किए ही, चरण दबाए और केश का संस्कार किए, तो इसको गोद में लेकर के चलते तो क्या हर्म हो जाता, और ये गोद में चढ़ना चाहिए, कंधे पर चढ़ना चाहिए, इसीलिए छोड़ करके चले गए। तो राधा रानी का गुण गा रही है चंद्रावली, ये नहीं करना चाहिए था कृष्ण को, ठीक है हम लोगों को छोड़ करके चले गए, लेकिन श्री राधा को भी छोड़ कर चले गए, देखो कृष्ण का स्वभाव। कभी कृष्ण की निंदा नहीं करती है, और उस समय निंदा कर रही है वो भी प्रेम गर्भित निंदा है, ऐसा नहीं है कि भगवान में वास्तव में दोष देख रही है, तो समय समय पर पता चलता है कि वास्तव में राधा या चंद्रावली या कोई भी सखी एक प्राण है, एक विचार है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रियतम श्याम सुंदर का सुख विधान करती है, उनको सुखी करना चाहती है, कोई भेदभाव नहीं। तो यहां पर अभी आप सुन रहे हैं कि वे दुख में भर गई, आंसू निकलने लगे और चुपचाप रह गई, बोल नहीं पाई, लेकिन कुछ ही समय के बाद श्याम सुंदर के प्रति क्रोध आया सबके मन में, ऐसा क्यों बोले, क्या समझ कर बोले, मतलब इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अपना अधिकार मान करके श्याम सुंदर से इस तरह बात कहना चालू की। आंखों के आंसू को पोछ करके किंचित संरम्भ गदगद गिरा, किंचित संरम्भ है, संरम्भ का अर्थ होता है प्रणय कोप, प्रेम कोप से गदगद कंठ हो रहा था, उसने बोलना चालू की। अभी भी जैसे बच्चे कभी कभी सिसकते हैं माता पिता की उपेक्षा करने पर, खास करके माँ की उपेक्षा करने पर बच्चे रोते हैं फटफट फटफट करके, कई बहुत देर तक रोते रहते हैं। माँ खिलाती भी है तो जल्दी खाते नहीं है और रोते रहते हैं, खासकर इस भाव से कि इतना हमारा मान की है, माँ हमारी इतनी सेवा की है, लेकिन आज मैं इतना पराया हो गया कि ऐसे कर रही हूँ। लोक में देखा जाता है बच्चे रोते हैं भगते हैं, गोपियां अभी भी रो रही थी लेकिन रोते रोते ही प्रियतम श्याम सुंदर पर क्रोध भी आ रहा था, रो रही है और क्रोध भी है, इस कारण से बाई गदगद है, वो श्रीकृष्ण से बोल रही है, साथ नहीं बोल रही, रोते हुए बोल रही है और क्रोध में बोल रही है, अपना समझ करके। ये वास्तव में आत्मीयता की पराकाष्ठा है, उन पर क्रोध करके उन पर अपना अधिकार जान करके और बोलने लगी, बाई गदगद है। क्यों बोल रहे हैं कृष्ण से, प्रियतरम इव प्रतिभासमानम प्रिय पृष्ठम, श्री कृष्ण हैं गोपियों के प्राणों से भी अधिक प्रिय। प्राणों से भी अधिक प्रिय का क्या अर्थ है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेना सहज प्रिय है, यदि कोई हमारा कंठ दबाए नासिका दबाए कहे सांस नहीं ले सकते हो तो उस समय कितनी तड़फड़ाहट होगी, बेचैन हो जाएगा व्यक्ति सांस लेने के लिए। तो सांस लेने जितना प्रिय है, प्राण जितना प्रिय है, उससे कोटि कोटि गुना अधिक कृष्ण प्रिय हैं गोपियों के। तो ऐसे परम प्रिय प्रियतरम वो प्रतिभासमान, जैसे अप्रिय जन की तरह बोल रहे, प्रियतर की तरह बोल रहे, लगता है कि कृष्ण से पहले कोई संबंध ही नहीं था, कोई प्रीति नहीं थी या कुछ भी नहीं था, इस तरह से बोल रहे थे, अतः क्रोध आ रहा था। अपना प्रिय अप्रिय की तरह शत्रु की तरह बोलने बोल रहा है, अतः क्रोध आया और भगवान से इस प्रकार भी बोलने लगे, परम चित्ताकर्षक कृष्ण से इस तरह से बोलने लगे। गोपियां कहती हैं यहां से प्रणय गीत चालू हो रहा है, इस सत्र का मुख्य विषय है प्रणय गीत और कृष्णानवेषणम। ये प्रणय गीत प्रणय जो किसी जीव को किसी के साथ बहुत निकट से जोड़ता है, निकट लाता है, उसको प्रणय कहते हैं। अतिशय आत्मीयता से डांटना, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए संबंध में या आयु में छोटा है लेकिन किसी को डांटे प्रेम से तो इसको प्रणय कोप कहते हैं। कभी कभी पत्नी पति को डांटती है, देखा गया, तो डांटती तो ऐसा नहीं कि ऐसे शत्रु बन गई, और प्रेम से डांटती है और उसके डांट को उसकी भर्त्सना को पति वैसे स्वीकार करता है, लगता है ब्रह्मा जी अनुशासन कर रहे हैं, चुपचाप चुपचाप रह जाता है, कुछ नहीं बोलता है। ठीक, ये देखा जाता है लोक में, जबकि एक जीव से दूसरे जीव का वास्तविक कोई संबंध नहीं है, फिर भी इस प्रकार के भाव माया जगत में देखे जाते हैं। जिनके साथ नित्य संबंध है, जो अपने हैं, उनके साथ यदि क्रोध से बोला जाए, प्रेम से बोला जाए तो स्वाभाविक है। गोपियां कहती हैं नैवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो ते मुमुक्षुः। श्रीपाद सनातन गोस्वामी इस श्लोक के प्रारंभ में लिखते हैं, जासामेव प्रसादेन यासाम श्री नागरेश्वरे जल्प तत्व ज्ञायात वंदे श्री नागरेश्वरी। ब्रज के गोपियों की, भगवान के प्रेयसियों की चरण की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से ही उनके मुख से निकले हुए वाक्यों का अर्थ समझा जाता है, समझा जा सकता है। श्री गोपियों के मुख से जो लोग वाक्य निकल रहे हैं उसका वास्तविक मर्म तो भगवान श्याम सुंदर जानते हैं, इनके अलावा कोई क्या जानेगा। तो उन गोपियों के चरण की वंदना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, तो उनकी कृपा से हम उनके वाक्यों को समझ पा रहे हैं। इस तरह गोपियों के चरण कमलों का ध्यान करने चाहिए, उनकी कृपा से ही वास्तव में उनके वचन का मर्म समझा जा सकता है। गोपियां कहती हैं, प्रथम श्लोक में वे ये कह रही हैं कि हम सब कुछ त्याग करके आपके पास आई हैं और आप कहते हैं कि घर जाओ। आपके कहने का आशय यह है कि तुम अपने धर्म का पालन करो, आपके पास आना धर्म है। तो आपके पास हमारा आना धर्म है या अधर्म है, हम इस पर बाद में विचार करेंगे। पहले हमारा जो आप त्याग कर रहे हैं ये आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं, पहले इस पर विचार कीजिए। हम घर छोड़कर के आपके पास आई हैं, धर्म कर रही हैं या अधर्म कर रही हैं इस पर बाद में विचार करेंगे। पर आप जो त्याग कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, ये आप धर्म का पालन कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। आप भले ईश्वर हैं लेकिन ईश्वर का भी कोई धर्म होता है ना, भगवान का भी कोई धर्म होता है ना। हमने सुना है कि आदि पुरुष भगवान भी मुमुक्षुओं का भजन करते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति देते हैं, फिर उन्हीं से जो प्रेम करते हैं उनको ठुकराए हैं कभी? आज तक आप बताइए, भगवान नारायण अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कभी ठुकराए हैं? भगवान का एक धर्म है, आप अपने धर्म पहले देखिए। अब धर्म सिखा रही हैं, पहले कहे हे विभो, हे अस्मत प्राणनाथ, हे सर्वव्यापक, आप हमारे हृदय में भी हैं और बाहर भी हैं। वास्तव में श्री कृष्ण इतने प्रतिभावान हैं कि गोपियां जानती हैं कि सबके हृदय की भी बात जानते हैं और बाहर की बात तो जानते ही हैं, कई बार उन्होंने लीला में व्यक्त किया। तो आप हमारे हृदय की बात समझते हैं और बाहर की बात भी समझते हैं। हे दुर्वग्रह, हे परम स्वतंत्र, हम जानते हैं कि आपके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है, आप परम स्वतंत्र हैं, जो चाहते हैं वही करेंगे, कोई आपके बस में नहीं है, किसी के बस में आप नहीं है, आपके बस में सब है। परंतु आपसे हम कहती हैं कि भवान एवं निशंसम गंतु मा अर्हति, आपको इस तरह का कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। पहला शिक्षा भगवान को दे रहे हैं, आप जो बोले हैं हम लोगों से ऐसा वचन आपको नहीं बोलना चाहिए, आप सरासर गलत बोले। सुनिए धर्म की शिक्षा, हमारा धर्म तो बाद में चर्चा का विषय होगा, पहले आप अपना धर्म देखिए। ये सही बात है, भगवान को अपना धर्म तो निभाना चाहिए ना। भगवान का धर्म क्या है? शरणागत का पोषण करना, शरण में आए हुए को न ठुकराना, ये भगवान का धर्म है। आप पहले अपना धर्म त्याग रहे हैं, आप अपना धर्म देखिए। जो ठुकरा रहे हैं, अगर कहा जाए भगवान से, कहा जाए भगवान कहे कि हम ठुकरा क्या रहे हैं, तो गोपियां कहा कि आप जो वचन बोल रहे हैं ठुकराना नहीं है, इस तरह का वचन आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए। भगवान ये आदर से संबोधन कर रहे हैं अथवा व्यंग में, भगवान प्रेमाग्र स्वभावतया प्रसिद्ध है, कि अर्थ आप प्रेमाग्र कोमल चित हैं, प्रेम भरा हुआ है आपका सभी जीवों के प्रति, खासकर ब्रजवासियों के प्रति, गौओं के प्रति, सबके प्रति, हमारे प्रति। आपको एवं निरसंसम गदतु मा अर्हति, आप इस तरह से निरसंस साक्षात प्राण हारकम वचनम वज्र सार्वक काठिन्यन हृदय विदारक। वज्र की समान इस तरह से कठोर वचन बोलना जो हृदय को फाड़ दे, ऐसा वचन आप बोलने के योग्य नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना। इसका मतलब सीधा भगवान का आक्षेप है कि आप पहले बोलना सीखिए कैसे बोला जाता है। स्वागतम वो महाभाग, आप जो बोल रहे कितना आपके वचन में अनन्वय है, अन्वय नहीं है, कितनी असंगति है, पहले आप तो विचार कीजिए। ये दस वाक्य जो हम दस श्लोक हम लोगों से बोले हैं इसमें क्या क्या असंगति है। जब आपने कहा कि स्वागतम वो महाभाग, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि जाओ, गलत बोल रहे हैं कि नहीं? एक बार तो आप कहते हैं स्वागतम, तुम आई बहुत अच्छा हुआ, और फिर कहते हैं जल्दी लौट जाओ। भाई बोलना तो सीखो कैसे बोला जाता है, बस बोल रहे थे। अरे विचार नहीं आ रहा था कितना गड़बड़ बोल रहे हैं, कितना अजुक्त बोल रहे हैं। तो दूसरा वचन बोले यार, प्रियम किम करमारी, वह तुम्हारा क्या प्रिय करे, तो सुनना चाहिए था ना क्या प्रिय करे, फिर कहते लौट जाओ, यही प्रिय है, बहुत बोलने वाले हो गए। इस तरह से भगवान को डांट भी रही है एक प्रकार से। जब पूछे कि प्रियम किम करवाणी वह, हे गोपी हो हम आपका क्या प्रिय करें, तो सुनना चाहिए था ना कि हम क्या कह रही हैं, आप क्या हमारा प्रिय है, तो सुने नहीं। और इस तरह से वचन बोलने वाला कोई कहे, मान लीजिए कोई आया अतिथि और कहे ठीक है स्वागत है, आप क्या खाएंगे, ठीक है जल्दी जाइए, आप बताए, न बैठने के लिए कहा, न आसन दिया, न खिलाया, और तुरंत कहता है जाइए। तू तो पागल व्यक्ति ऐसा बोलेगा ना। समस्त वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान के वचन में इस तरह से दोष निकाल दे रहे हैं। और जब एक बार पूछे कि क्या प्रिय करूं, तुम्हारा स्वागत है, ब्रज में कोई कोई अकुशल तो नहीं है, ब्रज के सब लोग कुशल है, ना कोई विपत्ति तो नहीं आई है, और कोई उत्तर नहीं सुनना, बस लगातार बोलते रहना, वृंदावन की शोभा देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, घर के लोग परेशान होंगे, जल्दी लौट जाओ, जल्दी लौट जाओ, तो पहले क्यों ऐसे बोले? शुरू में ही कह देना चाहिए जाओ जाओ भागो भागो भागो, तो फिर स्वागत प्रियम किम करवाड़ी वाह बोल रहे, तत्कालिक ही वचनों में दोष निकाल रहे हैं। भगवान के साथ गोपियों का बिल्कुल अभेद संबंध है, अभेद संबंध में तो बिल्कुल समान का संबंध है। तो क्रोध तो हो रहा है, शोक तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ प्रणय कोप है, तो निरुत्तर कर रहे भगवान का। एवं निशम सम ईदृशम कथंती कथंचित एक वचन सदृशम अपनी किम वक्तव्य बतावित। एवं आप जितना कठोर इस समय बोले हैं, इसके समान और भी कोई दूसरा कठोर बोलने के आप योग्य नहीं है, फिर इस प्रकार का कठोर कहां से बोलेंगे? भवान मां अर्हति, आप इस तरह के हृदय विदारक वचन बोलने के योग्य नहीं है। आप अपना स्वरूप देखिए, आप अपनी तरफ देखिए, कितने कठोर वचन बोले हैं। वज्र सार, वज्र का इसेंस में सार जो होगा, जितना कठोर होगा वैसा वचन आप बोले हो, ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए। गीता बोलने वाले भगवान को कहा जा रहा है कि आप थर्ड क्लास की बात बोल रहे हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भगवान भी समझते हैं, समझते हैं, इनको भी बड़ा गर्व रहता है कि हमसे बोलने वाला अच्छा कोई नहीं, लेकिन गोपियां तत्काल पकड़कर कहती हैं कि आप बिल्कुल गड़बड़ बोल रहे हैं। इस तरह निरशंस निरशंसम गदितुम वक्तुम, इस तरह से कठोर वचन बोलने के योग्य आप नहीं है। इसलिए भाव यही है कि आप नंद महाराज के पुत्र हैं, परम कोमल स्वभाव है नंद महाराज, और इसके पूर्व आपने ब्रजवासियों की हम सब की रक्षा किया है, हमारी कातर प्रार्थना को सुनकर आप पर्वत तक उठा लिए, गिरिराज धारण किए और काली नाग का मर्दन किए, क्या क्या किए, आग पिए और अनेक असुरों का वध किए, और आज इस तरह से आप कठोर बोल रहे हैं। आपको इस बात का पता नहीं है कि हमारी क्या दशा होगी। आपके इन वचनों से कभी सोचे नहीं, हृदय को फाड़ देने वाला वाक्य बोल रहे हैं। अधिकारी अनधिकारी देख करके वचन बोलना चाहिए। आपने जो ये वर्णन किया कि स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना या करना, ठीक है, आपका वचन ठीक है, परंतु हम लोगों के सामने ये नहीं बोलना चाहिए था। ये आपने बहुत गलत बोला है, ठीक नहीं किया। इस प्रकार भगवान के वचनों में दोष निकालते हैं। मां अर्हति अत्र संरम्भ गदगद इति उत्तत्व सर्वत्र शब्देन स्वरेण व दन्यादव अपनी प्रणय को व्यंजनीय। सिर्फ सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यहां पर भले दैन्य से बोल रहे हैं गोपियां, लेकिन प्रत्येक वाक्य में शब्द के द्वारा और स्वर के द्वारा भी प्रणय कोप ही व्यंजनीय है, प्रणय कोप व्यक्त हो रहा है, केवल दैन ही व्यक्त नहीं हो रहा है। एवं स्वागतम व महाभागा इत्यादि को भवता साधनम संन्याय मृदु उक्तम अपि निवर्तनार्थम एति रस विघात तत्व अर्थ तो विपरीतम एति भाव। जब भगवान ने कहा कि हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागतम व महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा, ये सब वाक्य भी अगर आप यह कह रहे हैं कि घर लौट जाओ, तो उस समय मृदु वाक्य बोले शुरू में कि स्वागत है तुम्हारा क्या प्रिय करो, इसमें भी छल ही है, मतलब लौटना ही प्रधान आपके मुख से निकला। यह कपट है ना, एक बार कहना कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, क्या प्रिय करो, क्या प्रिय करो, और तुरंत बोल दे जाओ। जैसे एक मुझे याद आ गई बात, एक बार हम लोग गोरखपुर से अयोध्या आ रहे थे, भाई जी हेमंत प्रसाद पुत्र थे यहां से, तो एक व्यक्ति हमारे गांव के गाय के श्री क्षेत्र दास नाम है, उनको बहुत जोर से भूख लगी थी अयोध्या पहुंचने पर और थकावट भी थी, पर तुरंत भगवान का दर्शन करना इस मंदिर में, कनक भवन में या हनुमानगढ़ी जन्मभूमि ये सब कर रहे थे हम लोग। तो कोई कहते थे ये कोप भवन है, यहां कैकई ने वर मांगा था महाराज दशरथ, तो ये कहते थे वो अच्छा यही कोप भवन है, ठीक है चल लेते, ऐसे बोलते थे, मतलब यही कोप भवन है, अच्छा चला जाए। वो तो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी डेरा पर जाकर आराम करें, उनको कुछ भी अब सुहाग नहीं रहा था, लेकिन एक बार मुंह से निकलता था यही कनक भवन है, बहुत अच्छा अच्छा चल। तो वो कनक भवन की प्रशंसा या जन्मभूमि की कुछ भी अब उनका प्रयवसान किया था, तात्पर्य क्या था कि जल्दी चला। तो यदि भगवान यह बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ तुम आई, हम क्या प्रिय करूं, अच्छा तो ठीक है जल्दी चलो जाओ, इसका मतलब कि वह वचन बोलना भी कपट है। गोपियां इस तरह से क्रोध कर रही है, जो अनुकूल वचन है मृदु वचन है उसमें भी कपट छिपा हुआ है। बस हम लोगों को घर भेजना ही आपके वाक्यों का तात्पर्य है और कुछ नहीं। श्रीपद सनातन गोस्वामी ये कह रहे हैं कि अनुकूल वाक्यों में भी गोपियों का प्राण ही व्यंजनीय है, प्रकट करने जो के तब मान लीजिए अगर भगवान कहे ठीक है हम बोलना नहीं जानते हैं भाई, अब गाय भेड़ चराए हम बोलना कहां से जानते हैं, तो स्कूल गए होते तो सीखे होते। मान लीजिए भगवान कहे तो गाय चराए भेड़ बकरी सब चराए, तो ऐसे गाय पशु चराने वाले को क्या बुद्धि हो सकती है, लेकिन बहुत प्रिय वादिन्य आप लोग तो बोलना जानती हैं, तो हे प्रिय बोलने वाली हे गोपियों, तरही किम करतुम अरहानी, हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मैं करूं क्या, मुझे क्या करना चाहिए। जब गोपियों ने कहा कि आपको बोलने नहीं आता है, इस विषय में आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो भगवान कहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है आप ही बताइए। मान लीजिए भगवान अगर कहा तभी की करूं, क्या मैं करूं, तब गोपियां कहती हैं अस्मान भजस्व, हमारा भजन करो। भजन करने का मतलब है कि अस्मान मनोरथ पूर्णेन अनुवर्तस्व, हमारा जो मनोरथ है उसको पूरा करते हुए हमारे पीछे चलो। भजन का मतलब ये है, तेज मत बनो, बस लौट जाओ लौट जाओ। एक तो गलत बोल रहे हैं, हम भगवान कहें क्या करें, तो कहें हमारा अस्मन भजस्व। देखिए मूल श्लोक में शब्द है, हमारा भजन करो, भजन का मतलब आप हमसे प्रेम कीजिए, हमारे प्रेम को समझने का प्रयास कीजिए, हमारी जो अभिलाषा है वर्षों की, बचपन की ही, उसे पूरा कीजिए। अर्थात हमें अपनी दासी बनाइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमें क्यों इस तरह के फालतू धर्मों का और कर्मों का उपदेश कर रहे हैं, हम कभी करने वाली नहीं है, जाने वाली नहीं है। गोपियों ने बाद में यहां तक कह दिया हम यहां आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम लौटने वाली नहीं। साफ कहा कि अब हम यहां मरेंगी लेकिन जा नहीं सकती, तो आप हमारे भजन कीजिए, आप हमारे अनुकूल होइए, आप हमसे प्रेम कीजिए। भजन का अर्थ है यह अस्मन भजस्व। तो भगवान ने कहा कि हे गोप गृहिंड, पति आदि के हिताचरण के साथ ही अनुवर्तन करूंगा, ठीक है मैं आपका भजन करूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पति आदि के अनुकूल रहें, उनकी सेवा करें, इसके साथ हमसे भी प्रेम रहे। हम ठीक है आपके मनोरथ को पूरा करेंगे, मतलब हमसे भी प्रेम रहे, हम आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में रहिए। और प्रेम तो ऐसे ही बना रहता है, कोई निकट रहने से ही बनता नहीं, तो आप अपने पति आदि का अनुकूल रहिए, सेवा कीजिए, इसके साथ साथ हमसे प्रेम, मैं आपसे प्रेम करूंगा। गोपियां कहती हैं सर्व विषयं संत्यज्य, हम सभी विषयों को, इंद्रियार्थों को, पति आदि को, साम्राज्य को, वैकुंठ आदि को भी सबको छोड़ करके आपके शरण में आएंगी। तो पाद मूलम भक्त, हम सब कुछ छोड़ करके और पुनः अंगीकार दाढ़े न त्यक्त्वा तेषां भजन प्रतिकूल्य तस्य भजन प्रति, ये सभी आपके भक्ति के प्रतिकूल हैं, आपसे प्रेम नहीं करने देते हैं, इसलिए हम लोगों ने सबका त्याग करके पति आदि का आपके चरणों की शरण लिया है, हम आपका भक्त हैं, हम आपकी प्रेमिकाएं हैं, अतः आप हमारा भजन कीजिए, हमारा मनोरथ पूरा कीजिए, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इसका अर्थ क्या है कि हम सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में आई हैं, तो आप भी सब कुछ छोड़ करके हमसे प्रेम कीजिए, यह अर्थ है। जैसे हम सब कुछ छोड़ करके आई हैं, तो आप भी सब कुछ छोड़ करके हमसे प्रेम कीजिए। भगवान वास्तव में ऐसा कर नहीं पाएंगे, इसीलिए तो भगवान गोपियों के प्रेम के ऋणी हैं, आज तक उचका नहीं सकते। गोपियां अपने पतियों को छोड़ी, ये छोड़ी, वो छोड़ी, और कृष्ण तो नंद जसोदा को भी नहीं छोड़ पाए, है ना? ये क्या त्याग करेंगे, उनको गोचारण करना ही है और घर में रहना ही है, घर छोड़ करके गोपियों के समान क्या प्रेम करेंगे। तो गोपियां कहती हैं कि सर्व विषयां संत्यज्य, सारे विषयों को हमने छोड़ दिया है, मन से जिनका चिंतन किया जाता है, इस लोक के भोग, परलोक के भोग और पति ससुर सब कुछ का त्याग किया है हमने, सब कुछ का, वेद धर्म लोक धर्म सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ा किस लिए, तव पाद मूलम भक्त, हम आपके चरण तल में भक्त हैं, समर्पित हैं, दैन्युक्ति है। अतः हे दुर्वग्रह, हे स्वच्छंद, अस्मान मां त्यज, आप हमारा त्याग मत कीजिए, त्याग करना आपके योग्य नहीं है प्रियतम, हम त्यागने योग्य नहीं है, आप हमारा त्याग मत कीजिए। वास्तव में गोपियों की यह प्रार्थना बहुत ही मार्मिक है। आप हमारा भजन कीजिए, आप हमारा त्याग मत कीजिए, दोनों शब्द बोल रहे हैं, अस्मन भजस्व और अस्मन मा त्यज, मा त्यज अन्यथा एवं दोषः स्याद् इति भावः। इस पर बहुत बड़ा, इस कारण से आप पर बहुत बड़ा दोष होगा, बहुत बड़ा बहुत बड़ी गलती होगी आपके जीवन में। आप अपने स्वरूप को देखिए, गर्गाचार्य ने कहा है कि आप गुणों में नारायण के समान हैं, तो आपको अपने जीवन में भगवान नारायण को ही आदर्श मानना चाहिए, वो जैसा करते हो वैसा कीजिए। तो नारायण क्या करते हैं, देव यथा आदि पुरुष, जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण मुमुक्षु भजते, जो मुक्ति चाहते हैं उनसे भी वे प्रेम करते हैं, उनको मुक्ति देते हैं। फिर की मुतक तबेक कैप्सिंग, अभी कोई केवल नारायण से ही प्रेम करे तो उसको क्यों नहीं शरण में रखेंगे, जबकि मुक्ति चाहने वाले को भी शरण देते हैं, उनको मुक्ति देते हैं, मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति देते हैं, मुक्त करते हैं। तो जो स्वभाव भगवान नारायण का है वही स्वभाव आपका होना चाहिए, जैसा गर्गाचार्य जी ने कहा है। तो जैसे नारायण अपने शरण में आए हुए का त्याग कभी नहीं किए हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हे प्रियतम, आपकी शरण में आए हुए का त्याग आपको कदापि नहीं करना चाहिए। हम आपकी शरण में आए हुए हैं और सब कुछ छोड़ करके आए हुए हैं, और फिर जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं, इसलिए आप हमारा भजन कीजिए, हमको स्वीकार कीजिए, और इस तरह के कठोर वचन मत बोलिए, आप ऐसा बोलने योग्य नहीं है। और वास्तव में यदि भगवान ऐसा बोलने लगे कि मेरे चरण कमलों को छोड़ करके संसार में जाओ, प्रेम करो बाल बच्चा से, दुनिया से, तब तो ऐसे ही आदमी मर जाएंगे। गीता में जब बोल रहे कि सब छोड़कर हमारे शरण में आओ, तो कोई आ ही नहीं रहा है, और ऊपर से बोल दे कि हमारे भजन की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब अपना देखो परिवार, तब क्या दशा होगी। ऐसे तो दुनिया में वचन बोलने वाले सब लोग भरे पड़े हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भगवान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान को तो हमेशा यही बोलना चाहिए कि सब छोड़ो आओ मेरे पास, यही भगवान के लिए योग्य है। और जो दूसरे मूर्ख लोग हैं वो कहता है भजन तो होता रहेगा, पहले देखो परिवार काम धंधा देखो, ये देखो, ये ठीक भगवान से विपरीत बोलते हैं। यदि भगवान इस प्रकार की बात बोलने लगे, अपनी शरण में आए हुए को संसार में भेजने लगे, तो अवश्य यह भगवान का अपने स्वरूप से विरोधी कर्म है, ऐसे भगवान को नहीं बोलना चाहिए, और वह भी गोपियों के लिए। तो भगवान के वक्तव्य में, वचन में सबसे पहले गोपियों ने दोष उद्भावना किया है, वे गलत बोल रहे हैं, और गलत बोल रहे हैं आपको नहीं बोलना चाहिए, इसका अर्थ है कि आप जो बोले हैं इसके लिए माफी मांगिए, यह भाव छिपा हुआ है। पहले आप ये स्वीकार कीजिए कि सॉरी गलत बोल दिया, आप पहले स्वीकार करो, इसके बाद हम दूसरी बात बोलेंगे। भगवान ने कहा होगा वास्तव में क्षमा स्व, बहुत गलती हो गई, वास्तव में हमें बोलने नहीं आया, भगवान ने जरूर कहा होगा, बाद में तो कहा ही है, स्वाभाविक है। इस तरह से ईश्वर को, भगवान को इतने योग्य हो करके भी और अनवसर पर ऐसी बात बोलना, जो सब कुछ छोड़ करके उनकी शरण में आई है, उनको कहते हैं लौट जाओ, और जो कुछ भी नहीं छोड़ा है उसको कहते हैं सब छोड़कर आओ। देखिए ये तो गलत हुआ था, ये तो पागल का उपदेश है, भगवान को ऐसा पागल जैसा नहीं बोलना चाहिए, जिसका कोई अन्वय नहीं, कोई अर्थ नहीं है। हम लोग सब कुछ छोड़ करके आई है, यदि मान लीजिए भगवान गीता में कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके आओ, मैं तुम्हें अपने शरण में रखूंगा, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, और कोई शरण में छोड़ करके आ गए और उसको अर्जुन को लगे कहने नहीं 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 जाओ जाओ जाओ, ठीक है युद्ध मत करो, तुम अपने स्वधर्म को देखो, चाहे अपने बंधुओं को देखो, ठीक है रथ से उतर कर जाओ, और अर्जुन कहे नहीं हम आपकी शरण में, आप कहिए हम क्या करें, तो भगवान कहे नहीं नहीं जाओ देखो कर, गलत बोलता है। देखिए कि भगवान जैसे वक्ता को भी, भगवान जैसे पूर्ण वक्ता को, सभी सद्गुणों में पूर्ण भगवान को गोपियां कह रही है कि आप पहले बोलना सीखो। पहले बोलना सीखो कि कैसे बोलना चाहिए, किससे क्या बोलना चाहिए। तुरंत ही प्रतियात ब्रजम ने स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, हे सुमध्यमा यहां स्त्रियों को नहीं ठहरना चाहिए, रात है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लौट जाओ लौट जाओ। गलत बोला ना, पहले स्वीकार करो। तो भगवान ने कहा होगा माफ करो, माफ, गलती हो गई, गलती हो गई। इस तरह से गोपियों का उद्धार निकल रहा है। जत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदातोयत्तम अस्तेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठ भवास्तनुभृताम किल बंधुरा। और आप कह रहे हैं कि हे प्रियतम, आपने जो यह उपदेश दिया कि भर्तु सुश्रम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया तदबंधुनाम च कल्याण प्रजानम चाम पोषण, आपने कहा कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना और उनके संबंधियों का पोषण करना। हे अंग, हे प्रिय कृष्ण, पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति ही स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वया उक्त। भगवान को कह रहे हैं कि आप धर्मवेत्ता हैं और धर्म पर आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया, अभी अभी हम लोगों के सामने आप धर्मवेत्ता हैं, व्यंग कर रहे हैं। वैसे वास्तव में भगवान धर्मवेत्ता हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, हम धर्म के भगवान प्रणेता हैं और प्रवचनकर्ता भी हैं, रक्षिका भी हैं, रक्षक भी हैं। गोपियां कहती हैं कि हे धर्मवेत्ता, आपने जो धर्म का उपदेश किया, क्या धर्म का, भर्तु सुसु श्रवम स्त्रीणाम परो धर्म यमाया, अपने भर्तार की, अपने पति की सेवा करना स्त्री का यही सबसे बड़ा धर्म है। यह बिल्कुल ठीक कहा है आपने, कोई गलती नहीं की। गोपियां स्वीकार कर रहे हैं कि त्वया उक्तम, आपने उपदेश दिया। अस्तु एवं एक तदुपदेश पदे तई से प्रेष्ठो भगवान स्तनुभृता मुखिल बंधुरात्मा, जो आपने उपदेश किया कि पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, तो इस उपदेश के जो आस्पद है, वास्तविक लक्ष्य है, वो आप हैं। आप ही की सेवा करना पति की वास्तविक सेवा है, उपदेश के अनुसार लक्ष्य आप हैं। कि प्रेष्ठो भगवान स्तनुभृता मुखिल बंधुरात्मा, आप ही समस्त प्राणियों के वास्तविक प्रिय हैं, बंधु हैं, अकारण हितकारी हैं और आत्मा हैं, अपने स्वरूप ही हैं। इस तरह से इसको समझा जा सकता है। गोपियां भगवान से कहती हैं कि आप कहे कि पति की सेवा करना स्त्री का धर्म है, वास्तव में आपका उपदेश बिल्कुल ठीक है और चाहिए कि पत्नी अपने पति की सेवा कर, लेकिन पति है कौन वास्तव में, किसी भी स्त्री का पति कौन है, आप जरा विचार कीजिए। पृष्ठ भवान स्तनु भृतान के लिए बंधुरात्मा, जितने शरीरधारी हैं उनके शरीर के भीतर आप विद्यमान हैं परमात्मा के रूप में, और आपका ही एक अंश जीव है। तो जब तक परमात्मा और जीव शरीर में रहते हैं तभी तक शरीर प्रिय लगता है ना। तो आपसे हम एक बात पूछती हैं कि शरीर के भीतर जो जीव रह रहा है, ये परमात्मा के रूप में आप रहते हैं, वह पति है कि वह मृतक शरीर पति है? पति किसको कहेंगे? ये विचार किया जाए, वही पति जब आत्महीन हो जाता है, आत्मा शरीर से निकल जाता है, तो उस मृतक शरीर को फिर रखा नहीं जाता है, उसको जला दिया जाता है या जमीन में डाल दिया जाता है या जल में डाल दिया जाता है, पशु आदि खा जाते हैं। पति है कौन? किसी शरीर में जो जीव है वही पति है ना, कि जड़ शरीर पति है, विचार करने योग्य बात है। गोपियां कहते पृष्ठो भवान स्तनु भृतान किल बंधुरात्मा, आप ही समस्त प्राणियों के पृष्ठ है, प्रियतम है और बंधु है, निरुपाधि हितकारी है और आत्मा परमात्मा है, नियामक है या निरुपाधि प्रेमास्पद, आप ही हैं सभी शरीरों में। कि जब शरीर के भीतर आप से ही सब प्रेम कर रहे हैं, जीव के रूप में आपका अंश है, परमात्मा के रूप में आप हैं, तभी तक शरीर प्रिय लगता है, तभी तक सेवा भी की जाती है ना। कोई पत्नी अपने पति की सेवा कब तक करती है, जब तक उसके भीतर शरीर में, पति के शरीर में आत्मा है या परमात्मा है। और आत्मा या परमात्मा जब शरीर को छोड़ देते हैं, तब क्या मृतक शरीर की वो सेवा करती है पत्नी? नहीं करती, उसे दग्ध कर दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति की सेवा शरीर के भीतर पति मान करके की जा रही है, और वही व्यक्ति यदि मूर्तिमान शरीर से बाहर पति के रूप में खड़ा हो, उसको छोड़ दिया जाए? आप ही पति हैं ना सबके। अगर जीव के रूप में देखा जाए तो आप ही हैं, आप कहें ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कृष्ण का ही अंश है जीव, और परमात्मा के रूप में कृष्ण है, तो पति हुआ कौन? पति ये लंप ऑफ मैटर थोड़े है, ये माटी का धोंधा, ये पति नहीं है, ये तो जड़ है, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। वास्तविक पति तो उस शरीर के भीतर जो है वह है, जो बोलता है, खाता है, पीता है या किसी के वचनों का उत्तर देता है, और वो शरीर को छोड़ देता है तो शरीर तो मृतक है। तो पति हुआ कौन? पति तो आपका अंश है ना, या आप हैं। इस प्रकार से जब आप किसी को मिल जाए पति के रूप में, फिर ऐसी कौन अभागनी स्त्री होगी जो जाकर के उस जड़ शरीर को पति मानेगी और उसकी सेवा करेगी? हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, हमें बहुत सोच समझ करके आपसे प्रेम किया है, हम नहीं जा सकते हैं घर, हम क्यों किसी की जड़ शरीर की सेवा करें जब आप मिले हुए हैं? भगवान से बहुत तर्क वितर्क हो रहा था। एक बार गोपी ने उदाहरण दिया भगवान को, एक बार एक पति प्रदेश जा रहा था, तो बहुत पतिव्रता स्त्री थी, बहुत पतिव्रता स्त्री थी, वो पति के विरह में रोने लगी कि मैं कैसे रहूंगी, क्या रहूंगी। तो पति ने क्या किया कि अपनी एक मूर्ति बनवा करके पत्थर की और दे दिया पत्नी को सेवा करने के लिए, जब तक मैं प्रदेश रहूंगा, प्रवास में रहूंगा, तब तक तुम इसकी सेवा कर किया करना, अपने जैसा दे दिया है मूर्ति बनाकर। ये गोपियां कहती हैं। तो बहुत दिन प्रवास में रहने के बाद पति घर लौटा, घर का कपाट बंद था, और वो स्त्री पति की सेवा कर रही थी, मतलब मूर्ति की सेवा कर रही थी, भोजन परोस रही थी, श्रृंगार कर रही थी, व्यंजन पंखा जो भी डुला रही थी, आरती कर रही थी। तब तक पति आया और उसने दरवाजा खटखटाया। तो गोपियां कहती हैं कि यदि वह पत्नी कहे कि अभी मैं अपने पति की सेवा में हूं, रुको, और बाहर से पति कहे करे मैं तुम्हारा पति हूं, आ गया मैं, आ गया हूं, कपाट पे खोलो, नहीं नहीं मैं सेवा कर रही हूं, मैं सेवा कर रही हूं अपने पति। द्वितीय पूछती है कि हे प्रियतम श्याम सुंदर, आप बताइए कि उस समय उस स्त्री का कर्तव्य क्या है? मूर्ति की सेवा करे कि आप वो अपने पति की सेवा करे, क्या करे? ये तब तक हम लोग पूज रही थी पांच भौतिक मूर्ति को पति मान करके अज्ञान में, जब तक आप वास्तविक पति मिले नहीं थे। आप ही पति हैं, आप ही सब कुछ है, हम कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जा सकते। इस तरह से गोपियां कह रहे कि पृष्ठो भवान स्तनु भृतान किल बंधुरात्मा, समस्त शरीरधारियों के आप ही प्रिय हैं, आप ही पृष्ठ हैं। किसी शरीर से कोई स्त्री कब तक प्रेम करती है? जब तक आत्मा उसमें है। तो वास्तविक प्रेम तो आत्मा के साथ हुआ ना, जड़ शरीर के साथ तो प्रेम हुआ नहीं। अगर जड़ शरीर के साथ प्रेम होता तो आत्महीन शरीर से भी वो प्रेम करती है, नहीं करती है, छोड़ देती है, अलाउ करती है कि ले जाइए जला दीजिए, है ना? क्योंकि वो पति नहीं है, पति वास्तव में कृष्ण है। तो गोपियां कहती हैं कि हे धर्मवेत्ता, आपने जो धर्म का उपदेश दिया लोगों को कि स्त्री का यही सबसे बड़ा धर्म है, तो आपके उपदेश का वास्तविक पालन कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं। आप पति हो तो आपके उपदेश के अनुसार भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर आप स्त्री के स्वधर्म का वर्णन करते हैं तो पति आप हैं, अतः आपकी सेवा करना ही पतिव्रता स्त्री कही जाएगी, बाकी कोई पतिव्रता नहीं कही जाएगी, क्योंकि पति तो जड़ है नहीं, आपका आंसर आप ही पति हैं। जब तक भगवान शरीर में है तब तक शरीर प्रिय लगता है, कोई किसी से प्रेम करता है, नहीं तो आत्महीन शरीर से कोई प्रेम नहीं करता है, बल्कि उसे मृतक कहा जाता है। और अपना प्रिय से प्रिय व्यक्ति कहता है उसके मुख पर ढक दीजिए, ले चल हो, और जो भी आता है घर में कहता है आप क्या दे रहे हैं, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो मेरे घर पर ले चलो, इसको दर्द करो, इसको खत्म करो, है ना? कफन से ढक दिया जाता है शरीर को। क्या वो पति है? नहीं, पति तो वास्तव में श्री कृष्ण है। जब तक है किसी के शरीर में तब तक वो प्रिय लगता है, नहीं है तो नहीं प्रिय लगता है। तो वास्तविक प्रिय तो भगवान है। पृष्ठो भवान स्तनभूतान कुलबंधुरात्मा, आप ही समस्त शरीरधारियों के पृष्ठ हैं, बंधु हैं और आत्मा। पृष्ठ का अर्थ है परम प्रिय और बंधु का अर्थ है निरुपाधि हितकारी, अकारण हित करने वाला। जैसे माँ अपने बच्चे का अकारण हित करती है, करती ही रहती है, कोई बदले में चाहती नहीं है, उस तरह से वास्तव में श्रीकृष्ण सबके हितकारी है। और बाद में गोपियों ने कहा है कि पति आदि तो केवल दुख देते हैं किसी को, ये सुख दे ही नहीं सकते प्रभु। ये प्रियतम सुख केवल आप दे सकते हैं, ये पति आदि तो आरती देते हैं, केवल दुख देते हैं। दुख के अलावा इनसे कुछ नहीं मिलता है। ये सत्य सिद्धांत की बात है, भले कठोर लगता हो लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात। संसारिक संबंधियों से किसी जीव को केवल दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, कोई सुख नहीं मिलता है। किसी व्यक्ति को यदि देखा जाए कि सबसे ज्यादा दुख किससे मिला तो अपने परिवार से। निष्पक्ष भी विचार किया जाए, देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुख अपने परिवार से होता है, पर फिर भी उसी में व्यक्ति आसक्त रहता है, दूसरे लोगों से उतना दुख नहीं होता है। गोपियों ने कहा है, इसके बाद तीसरे श्लोक से प्रारंभ कर रही है कि और सब लोग दुख देने वाले हैं, सुख केवल आप देते हैं। इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे कि समय लगेगा। तो श्री गोपियां यही कह रहे हैं कि आप जो उपदेश की उस उपदेश के अनुसार आप ही भजनीय हैं, आप ही पत्नी हैं, और उसके अनुसार हमें चाहिए कि हम अपने धर्म का पालन करें। तो हम वास्तविक धर्म का पालन कर रहे हैं, हम वास्तविक पतिव्रता हैं, हम वास्तविक सत्य में स्थित हैं, हमें आप मत ठुकराइए, हमें मत घर दीजिए, और हम जा भी नहीं सकते। हरे कृष्ण।